गिनती अध्याय 36। अध्याय 36 में आपको याद होगा भूमि के बाग में गड़बड़ पड़ने की बात थी। सलोलाद के पास 7 बेटियां थी परंतु कोई पुत्र ना था। उन्होंने कहा, ये तो ठीक नहीं है कि हमें भूमि का भाग ना मिले, वो भी इसलिए कि परिवार में कोई लड़का नहीं है। हमारे परिवार की भी औरों की तरह विरासत मिलनी चाहिए जैसे अन्य सबको मिली है। मूसा इस विषय को परमेश्वर के पास ले गया। उसने कहा, वे लड़कियां ठीक कहती हैं, उनको अलग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे लड़कियां हैं, इसलिए उनको भी देश में विरासत दो। जब तुम उस देश में आओ तब इन लड़कियों को भी भूमि में से विरासत मिलनी चाहिए। कुछ लोग यहूदा के गोत्र के साथ मूसा के पास आकर कहने लगे, देखो इससे कुछ समस्याएं उठने की संभावनाएं हैं। यदि इन लड़कियों ने मानो बिन्यामिन के गोत्र के लड़कों से विवाह किया या मनशे के गोत्र के लड़कों से, तब तो जुबली वर्ष के बाद जब सब चीजें पुराने स्वामी को लौट जाती है, इसका अर्थ है कि जो भाग यहूदा को दिया गया उसका कुछ भाग मनशे या उन दूसरे गोत्रों को चला जाएगा जहां ये लड़कियां विवाह करेगी। तब तो समस्याएं उत्पन्न होगी, हमारा हिस्सा दूसरे गोत्रों में बढ़ जाएगा क्योंकि ये लड़कियां भी अपनी विरासत चाहती है। इसलिए मूसा ने कहा, ठीक है, नियम यह है, लड़कियां सलोलाद की पुत्रियां को यहूदा के गोत्र में ही विवाह करना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें कोई विरासत नहीं मिलेगी। इसलिए सभी लड़कियों ने यहूदा के गोत्र में ही विवाह किया और किसी दूसरे गोत्र में विवाह न किया। और लड़कियों को विरासत मिलने पर यही देश के लिए नियम ठहरा, ताकि विरासत मिलने के लिए उन्हें गोत्र के अंदर ही विवाह करना है, ताकि गोत्रों में भूमि का बांटा जाना या हस्तांतरण न होने पाए। उन सब गोत्रों की अपनी निश्चित सीमा होती थी कि विवाह के साथ भूमि का अदला बदली या मिश्रण न हो सके। इसलिए जब लड़कियों को भूमि की विरासत मिलती थी तो उन्हें गोत्र में ही विवाह करना होता था ताकि भूमि वही की वही रहे। भूमि की सीमाओं का उल्लंघन होकर कोई असंतोष न पैदा हो। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यर्दन नदी के तीर पर मूसा के द्वारा इसराइलियों को दिए वे यही है। गिनती 36 का 13 पद। इस तरह मूसा का सफर पूरा हुआ जहां तक वो उनको ला सका ले आया। ये आज्ञाएं हैं और अब मूसा को अगुवाई यहोशू को सौंपनी है कि वो लोगों की प्रतिज्ञा के देश में लेकर चले। जब हम व्यवस्था विवरण में जाएंगे, जिसका अर्थ है दूसरी व्यवस्था या नियम, तब ये मानो उनका सारांश होगा। व्यवस्था विवरण के सारांश को हम तेजी से पूरा करेंगे। व्यवस्था विवरण के अंत में हम वही होंगे जहां पर अभी हम हैं। और तब आप अपने मनों में परंपरा के अनुसार सोचते हैं, परंतु हम समय के क्रम में सोचते हैं। बाइबल में व्यवस्था विवरण की पुस्तक गिनती की पुस्तक के बाद आती है। बाइबल पाश्चात्य रीति रिवाजों के अनुसार नहीं लिखी गई है। बाइबल में प्रायः हुआ यह है कि लेखकों ने संपूर्ण ऐतिहासिक दृश्य का वर्णन ही दिया है, परंतु उसका ब्यौरा बाद में दृश्य में भरा है। यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के साथ पाठकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यही है कि यह पुस्तक समय के संबंध में हमारे अनुसार क्रम का अनुपालन नहीं करती है। अतः व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अध्ययन में भी हम यही लेखन शैली देखेंगे। इसके तुरंत बाद ही हम यहोशू की पुस्तक का अध्ययन करेंगे जो समय के क्रम में चलेगी। परमेश्वर आपकी सहायता करे और वो उन चीजों को जिसकी आज्ञाएं उसने दी है हमें याद दिलाए। आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ और उसकी इच्छा और आपके जीवन में उसकी योजना का ज्ञान पाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके साथ रहे, आपका मार्गदर्शन करें और आप परमेश्वर के शक्ति में बचाए जाओ उस पर विश्वास और भरोसे के साथ, यीशु के नाम से, आमीन।